पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक का अर्थ बहुत स्पष्ट है, शस्त्रों से उसको छेदन नहीं कर सकते, अग्नि नहीं, अग्नि से जला नहीं सकते, पानी से उसको भिगो नहीं सकते और हवा से उसको सुखा नहीं सकते। अगर आप इस पर विचार करने लग जाएं तो आप देखेंगे कि भौतिक कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ये गुण हैं। इसीलिए आप काउंट करना चालू करेंगे, अच्छा धरती में गुण हैं, अब इसको सोचिए, धरती को भिगो सकते हैं ना, सुखा सकते हैं, धरती तो आत्मा नहीं। इस तरह से सांख्य योगी जो है वो आत्मा का विश्लेषण करते हैं। अच्छा धरती के बाद क्या है, जल, जल को सुखा सकते हैं, सुखा सकते हैं, उसके बाद काट नहीं सकते लेकिन धरती को तो काट भी सकते हैं, धरती से बनी हुई वस्तुओं को। उसके बाद अग्नि, अग्नि है ना, नहीं वायु, वायु को सुखा नहीं सकते, वायु जला सकते हैं, गैस तो वायु के रूप है ना, जलाया जा सकता है। और अग्नि और आकाश, अब अभी सूक्ष्मतर रूप में आप देखेंगे, लेकिन एक बात यह है कि आगे वाले जो श्लोक जाएंगे ना, सनातन सब सनातन शब्द यूज कर लिया जाएगा तो उससे इनको खारिज कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी है तो आप काउंट कर सकते हैं, 4-5 कारणों की वजह से बीमारी हो सकती है, तो आप देखेंगे ना इस कारण से तो संभावना नहीं रखती, हटाओ उसको, ये कारण, वो फिर आपने कुछ फैक्टर्स लगाए, मतलब ये कारण भी नहीं हो सकता इसको हटाइए, फिर ये कारण नहीं हो सकता, फिर हम जीरो इन यानी कि फोकस करते हैं, अब ये लग रहा है कि ये कारण हो सकता है, समझ रहे हैं, आपको पता नहीं कि कारण क्या है, आप 4-5 कारण को लेते हैं, फिर आप देखते हैं ये कारण तो हो ही नहीं सकता, हटाइए इसको, ये कारण तो हो ही नहीं सकता, हटाओ उसको, ये कारण तो हो नहीं सकता, ये 3 कारण नहीं हो सकते, इस कारण से हो सकता है कि 4th कारण हो। जैसे मान लीजिए इस रूम से कोई वस्तु चोरी हो जाए, मान मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 8:15 से लेकर के 7:45 के बीच में कुछ रूम से वस्तु चोरी हो जाए तो क्या सुदामा पुरु चोरी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन 8:15 से 7:45 के बीच में वो यहाँ पे थे ही नहीं, ये क्लियर है। तो उसके बाद देखेंगे, अच्छा एक भक्त ने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुलिस वाले ऐसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोला जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है, कौन सी वस्तु है, कौन सा एलिमेंट है जो कि हम आत्मा से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें वो आत्मा के वो गुण बता रहे हैं जो उसमें नहीं है। कौन से गुण बता रहे हैं आत्मा के? नहीं है। और कौन से गुण बताए गए थे अभी शुरुआत में जिसमें है? जो सर्वव्यापी है, याद है श्लोक, तो उसको बताया गया। तो इस तरह से हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, सांख्य योगी लोग बुद्धि के द्वारा क्या हम नहीं हैं उसका वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम ये नहीं हैं, और इसके द्वारा हम अपने आप को शरीर से अलग करते हैं। प्रभुपाद जी इसको कैसे बोलते हैं, क्या तुम नाक हो? नहीं हो। क्या तुम कान हो? नहीं हो। क्या तुम आँख हो? इस प्रकार से क्या हम नहीं हैं इसके द्वारा अंदाज़ा लगा सकता है कि व्यक्ति मैं क्या हूँ, अंदाज़ा लगा सकता है, पूरा नहीं मालूम कर सकता, समझ आ रहा है? देखिए अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति है अपने को जानने की वो चेतना की वजह से है, और दूषित चेतना के कारण हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो पहला चीज इस दूषित चेतना को काउंटरैक्ट करने के लिए ये है कि हम लोग ये सोचें कि हम क्या नहीं हैं, तो फिर आदमी थोड़ी शारीरिक चेतना से बाहर आ सकता है। बहुत मुश्किल लग रहा है समझने में, थोड़ा सूक्ष्म विचार है। हम लोग दूषित चेतना के कारण, समझिए फिर इस बात को, चेतना से हम समझते हैं कि हम कौन हैं और हमसे भिन्न वस्तु दिखती है, ये तो क्लियर है, दूषित चेतना में हम अपने आप को शरीर मान लें, तो इस चेतना से एटलीस्ट कुछ समय के लिए बाहर निकालने के लिए बुद्धि के उपयोग के द्वारा हम ये समझते हैं कि हम क्या नहीं हैं। ये आसान है समझना, है ना? जैसे आप किसी को बोलिए कि आप लीवर हैं क्या, कहते नहीं मैं लीवर तो नहीं हूँ। क्या आप टांग हैं, क्या आप अपनी हाथ हैं, तो तब वो अपनी बुद्धि के द्वारा जैसे डिस्क्रिमिनेशन पावर समझते हैं, चीज़ों को अलग देखने की, अलग विश्लेषण करने की क्षमता, इसके द्वारा अंदाज़ा लगा सकता है कि हम शरीर तो नहीं, क्या हम मलमूत्र के भरे हुए ढेर हैं। तो आप हर व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ, ये क्या अंदर जो कंकाल है वो है। तो आप देखिए, हम लोग भी सांख्य योग का सहारा लेते हैं अपनी बुद्धि को कम से कम कुछ समय के लिए इस चेतना से बाहर निकालने, जो शारीरिक चेतना है। लेकिन ये केवल जान लेने मात्र सफिशिएंट से सफिशिएंट नहीं है, इसका साक्षात्कार करने के लिए क्या होगा करना, मैं भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए सहायक है अपने को शारीरिक चेतना से बाहर निकालने का। तो इसलिए सांख्य योग के बारे में भगवान बताएंगे, आगे जाके बोल देंगे मैंने तुमको सांख्य योग से समझाया है, अब तुम्हें बुद्धि योग के द्वारा समझाऊंगा। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये कितना सुंदर है कि आत्मा कितनी अस्पृश्य है, हम सब कितने अस्पृश्य हैं, अस्पृश्य समझते हैं उसको छुआ भी नहीं जा सकता, नहीं अदृश्य नहीं जो छुआ भी नहीं जा सकता। अस्पृश्य मतलब अस्पृश्य का एक अर्थ है कि आप ना छूने लायक, और दूसरा अस्पृश्य का अर्थ है कि आप छू ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते अपने इंद्रियों के द्वारा। तो रियली हमारा कौन अपमान कर सकता है, ना सोचने वाली बात। हम जिसपे अपने मन को लेके बैठे बसते मेरा ये मान किया ये किया, एक्चुअली ये माया है। आज जब मैं प्रभुपाद जी को फूल दे रहा था तब मैं सोच रहा था क्योंकि मैं माया में हूँ इस कारण माइक मान अपमान से प्रभावित हो रहा हूँ। हिंदी समझ में आ रही है? माइक मतलब माया के द्वारा रचित मान अपमान क्या है, शरीर के प्रति जो मान अपमान है। और क्योंकि मैं माया से प्रभावित हूँ, अपने को शरीर मान रहा हूँ, इसीलिए इस मान अपमान की द्वैतता में फंसा हूँ। और अद्भुत बात है, हम लोग हमेशा ये प्रश्न करते हैं आ क्यों रहा है। अरे भाई एग्जाम में बैठे हो तो उनका प्रश्न क्यों आ रहा है? प्रश्न आना तो आपको आपको चेक करने के लिए, कितना सीखे हैं कि आए गए। और ये भक्तों के द्वारा भी आ सकते हैं, भक्त कह सकते हैं भक्तों के द्वारा ही आएगा, भक्तों के भक्तों के समाज में। बाहर वाला कुछ खराब बोलेगा तो ध्यान भी नहीं देंगे। एक और इंटरेस्टिंग है कि भक्तों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्त हमेशा अच्छा बर्ताव करेंगे, और हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी आप ऐसा बर्ताव कर रहे हो, हम तो सोच भी नहीं सकते। भगवान जान बूझ करके उस भक्त से आपके प्रति ऐसा बर्ताव करवाएंगे टेस्ट करने के लिए। बार वालों को तो समझ गए कि चलो बार वाला गाली देगा तुम चुप सहन कर लोगे, ये ध्यान नहीं दोगे पागल है, भक्त अगर करेगा तो फिर। तो ये भगवान बड़ा कठिन परीक्षा लेते जाते हैं हमारी चेतना की, और अगर हम थोड़े से विचारवान हैं तो उस पर विचार करेंगे कि कितनी बार हम पास हो रहे हैं कितनी बार फेल हो रहे हैं। तात्पर्य, सारे हथियार तलवार आग्नेस्त्र वर्षा के अस्त्र चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नि अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी जल वायु आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे, यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नि अस्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नि अस्त्रों को सामना जल के हथियारों से किया जाता था जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। समझ में आ रहा है या मुश्किल लग गई हिंदी? मतलब अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो वो जल अस्त्र का प्रयोग करेंगे। हाँ बहुत बार आप देखिए बाणासुर के संग युद्ध हो रहा था तो भगवान बहुत सारे इस प्रकार के युद्ध में अस्त्रों का उपयोग कर रहे थे। ऐसा आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। चक्रवात मतलब साइक्लोनिक आंधी का, जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। एक इसमें इंटरेस्टिंग कथा आती है सोक्रेटस की। सोक्रेटस को भी अनुभूति थी, ज्ञान के स्तर पे थे कि वो आत्मा नहीं है। आप जानते हैं सोक्रेटस के बारे में? तो सोक्रेटस जो है एक फिलोसोफर थे रोमन सभ्यता में। तो आत्मा के विज्ञान के बारे में कुछ कुछ वो बात कर रहे थे, तो जो राजा था उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम तो बंद करो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसने तो निर्भीक हो गया था। तो प्रचार कर रहे थे तो उनको बुलाया गया और सैनिक भेजे गए जहर का प्याला देने के लिए। कहा कि आप पीजिए इसको, पीना मारने के लिए आए। बोला आप मुझे मारोगे उससे पहले आप मुझे पकड़ो तो सही। सोक्रेटस बोलता है उसके पास भाले से मारा था, जहर से मारा था, जो भी है, लेकिन उनको बोला कि बिफोर यू किल मी फर्स्ट ट्राई टू कैच मी। आप पहले मुझे मारो, उससे पहले आप मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तो व्यक्ति कन्विंस था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा हूँ पता नहीं होगा लेकिन मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये उसको समझ में आ गया। तो प्रभुपाद जी डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म में इस पर चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हाँ वो ज्ञानी था और आगे जाकर भगवान का भक्त बन जाएगा। उसको भले पता नहीं हो कि वो आत्मा है, लेकिन कुछ जो भी कारण से सांख्य के एनालिसिस किया हो, वो समझ गया, अपनी बुद्धि से समझ गया कि शरीर नहीं है आत्मा, ये शरीर से अलग है। ये बात पढ़ मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ये समझने वाली बात है। मायावादी क्या बोलते हैं कि पहले भगवान थे और भगवान ये ब्रह्म जो था वो जब माया से आवृत हो जाता है तो फिर वो जीवात्मा बन जाता है। तो उत्तर में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा है इस बात को खंडन करते हैं। कहते हैं कि जब आप भगवान थे तो तब माया ने को पकड़ लिया। माया तो भगवान की दासी है, भगवान बोलते हैं मैया दक्षिणा प्रकृति। तो जब आप भगवान थे तब माया ने आपकी सत्ता को दबा दिया। अब जब माया से दब गए हो अब कैसे उठ जाएंगे, माया कौन उठाने देगी आप। और दूसरे एक अद्भुत बात है, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो आप ये बोल रहे हो तो ये वाक्य भी तो जगत के अंदर है, समझ रहे हैं? आपके वाक्य ब्रह्म कहाँ से हो गए? और ये शब्द भी गलत है क्योंकि बोलते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। इस समझिएगा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। फिर बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, ठीक है? तो अब पहले वाले सेंटेंस को लीजिए, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो क्या ये जगत ब्रह्म नहीं है? सब कुछ निश्चित रूप से सभी कुछ ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। अभी बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो आचार्य बोलते हैं कि भाई ये जगत है कहाँ पर? तो कहते हैं जगत है भी और नहीं भी है। तो फिर अजीब गोस्वामी बोलते हैं कि हमें इसकी सब बात समझ में नहीं आती। अब क्या बोलना चाहते हैं, ये है भी और नहीं भी है? ये तो वैष्णव सिद्धांत है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं सब कुछ ब्रह्म है, और एक्चुअली सही बात है, सब कुछ ब्रह्म है। मतलब सर्विदम इदम जगत ऐसे करके श्लोक आता है कि सब अधिदम इदम जगत करके श्लोक बोल रहा हूँ, सब कुछ ब्रह्मण की शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति है। लेकिन एज सून एज हम ये बोलते हैं कि शक्ति शक्तिमान में बिल्कुल अभेद है, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। भगवान शक्तिमान है, हम सब लोग उनकी शक्ति हैं। ये चीज न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। ये समझ आ रही है आपको बात? इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक लाइट का टुकड़ा है, उसमें से कुछ निकाल लिए गए हैं जीवात्मा। हमेशा से शाश्वत रूप से हम लोग अलग हैं भगवान से। अलग का अर्थ क्या है? अलग का अर्थ है हमारा व्यक्तित्व है। मैं ये अनुभव करूंगा जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो कि भगवान है और मैं हूँ। ये मैं हूँ ये भावना मेरा शाश्वत गुण है, इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। और भगवान के पास भी ये गुण हमेशा रहता है कि वो हैं, तभी तो प्रेम का संबंध हो सकता है ना। हम बोल रहे हैं कि भगवान से हमारा प्रेम का संबंध है, मतलब क्या है? आप हैं और मैं हूँ, तभी तो प्रेम कर सकते हैं। हम दोनों एक हो जाएंगे तो कैसे प्रेम कर सकते हैं? कौन किसको प्रेम करेगा? ये बात समझते नहीं लोग। अभी इस पर देखिए, हमने पहले भी चर्चा किया था कि मायावादी लोग बोलते हैं क्या कि मैं हूँ की भावना ही खत्म हो जाती है, तो पत्थर हो जाते ना, कि ये माइक हमसे आपसे प्रेम कर सकता है, नहीं कर सकता ना। वो एसेंशियली ये कह रहे हैं कि हम पत्थर बन जाएंगे इस साधना के बाद। बेवकूफ़ी, कभी भी आत्मा को इस चेतना से अलग नहीं कर सकते, ना भगवान को भी चेतना से अलग कर सकते, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। अब आप ये देखिए, जब अग्नि वाला उदाहरण दिया जा रहा है, अग्नि समझते हैं फायर, और स्पार्क वाला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसको बहुत खींचा नहीं जा सकता। जब भी उदाहरण दिए जाते हैं तो उदाहरण का अर्थ होता है शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय समझते हैं आप, शाखा का चंद्र न्याय का अर्थ है, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, पूछता है माँ चंद्रमा कहाँ है, तो नीम के पेड़ की दो शाखाओं के बीच में माँ बोलती है, देखो बेटा उन दो शाखाओं के बीच में चंद्रमा है। क्या वो चंद्रमा उन शाखाओं के बीच में है? लेकिन बच्चे को समझावट के लिए बोल दिया जाता है, उस एनालॉजी को बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि चिंगारी निकली है, तो एकदम से सोचेंगे चिंगारी तो अग्नि से निकली ना, लेकिन आत्मा और परमात्मा या भगवान ये दोनों शाश्वत हैं और दोनों अलग हैं। चिंगारी भक्का, जब चिंगारी और अग्नि का उदाहरण दिया जा रहा है तो क्या किस लिए दे रहे हैं? गुणों के सामंजस्य को बताने कि चिंगारी का जो गुण है वो अग्नि के गुण के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो लोग बोल सकते हैं अरे भाई चिंगारी तो निकली ना, ये कि हाँ बोलिए क्या हाँ। अब देखिए आप, नहीं अभी देखिए, हाँ ये बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आपने, मैं ये एकदम मस्त में बोलने ही वाला था ये बात कि चिंगारी बुझ जाती है, इसका अर्थ क्या है? हम अपने आप को भूल जाते हैं, या ये भी गलत बोल गया मैं, हम वाकई क्या है ये भूल जाते हैं। अभी भी हमें पता है कि हम हैं, इजंट इट, अब हम क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन हम हैं ये तो सब जानते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि बुझ जाने का अर्थ है कि आत्मा मर गई, खत्म हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। बुझ जाने का क्या अर्थ समझाया मैंने हरिचंद प्रभु? आत्मा के बुझ जाने का क्या अर्थ है यहाँ पे? बुझने का मतलब एक्सटिंग्विश्ड, द स्पार्क गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो बुझ जाने का अर्थ ये है कि हम अपनी स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं कौन।
और एक एग्जांपल, एक बेटा सब हरा है,
गुड,
एक पैरेट है,
यस,
पैरेट जाके वो पैरेट का बन जाएगा, लेकिन उससे दिखने तो सब एक ही,
यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग, ये मायावादी लोग बोलते हैं, ये उदाहरण को देते हैं कि तोते गए और पेड़ में मिल गए और दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने चर्चा किया था, कल ही चर्चा किया था कि दो तोते हैं, वो गए हैं और एक तोता फल खा रहा है, भले ही आपको तोता दिखाई ना पड़े। और ऐसा बहुत बार होता है, टिड्डे देखे ना, हरे टिड्डे होते हैं, वो खेत में दिखाई नहीं पड़ते, वो बैठे रहते चुपचाप। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फसल नहीं खा रहे, क्या फसल में मर्ज हो जाते हैं टिड्डे? ऐसा तो नहीं होता, बल्कि फसल उनमें मर्ज हो जाती है, सब खा जाते हैं। ऐसा हुआ था एक बार, ठीक है। वरहा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, सब प्रसिद्ध श्लोक को जानते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात मया चिता, और उसके बाद क्या बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव, है ना, याद है आपको? भूल रहा हूँ अभी लास्ट, ये देखिए, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बहुत सुंदर श्लोक है, वो बोल रहे हैं कि मेरा मोह खत्म हो गया, मेरी स्मृति आ गई, मैं हूँ कौन, और कैसे आई है, तत्प्रसादान मयाच्युत, भगवान आपकी कृपा से आई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे महाराज बता रहे थे कि इस जगत में कितना भी आप सफल हो जाइए, कितने भी लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर लीजिए, लेकिन एक भक्त ये जानता है कि भगवत कृपा से ही हमारा ये जो माया का मोह है ये समाप्त होगा, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर बात है कि इसका दूसरी बहुत एनकरेजमेंट बात ये है कि हम कितने भी मोहित हों, भगवत कृपा से वो मोह समाप्त हो सकता है। तो अपनी शक्ति पे की वजह से एनकरेज और डिस्करेज दोनों ही नहीं होने चाहिए कि अरे भगवान तो इतना पतित हूँ कि भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता, ये गलत है। एक बात बहुत अच्छा चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं कि आप भगवान को ये ना बताएं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप अपनी समस्याओं को ये बताइए कि भगवान कितने बड़े हैं। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, बट मैंने हिंदी ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया। और ये बोल रहे हैं स्थितोस्मि गत संदेह, मैं अपनी स्थिति में आ गया हूँ और संशय से मेरा निवारण हो गया, करिष्ये वचनं तव। आपको याद हो तो मैंने एक बार चर्चा किया था कि भक्ति करने में एकमात्र बाधा क्या है, हमारी बाधा है संशय, क्या हरि नाम या भगवान की शरण लेके हो जाएगा, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए भगवान का वचन पालन करने में तकलीफ नहीं है, भगवान का भक्त बनने में, भगवान को नमस्कार करने में, भगवान को क्या था वो मन मना भव मद भक्त मद्याजी, उनकी पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्य करना मुश्किल है क्या? भक्ति का कार्य करना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल है संदेह। और संदेह कैसे जाता है? संदेह होता कहाँ से है? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि जो है हमारी भगवद गीता के द्वारा सुन करके नरिश रहती है, तो फिर हमारा संदेह दूर हो जाता है, भगवान की भक्ति में हम सुदृढ़ रहते। तो ये भगवान की कृपा से होता है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं तो श्रद्धा भी होती है और संदेह भी होता है, श्रद्धा भी होती है संदेह भी होता है। अरे मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, फिर भी कुछ तकलीफें क्यों आ रही हैं? सूर्य के सामने तो हूँ मैं, तो फिर क्यों माया का मोह हो रहा है? तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रद्धा पूरी विकसित होगी तब मैं कृष्ण की शरण लूँगा। ये कृष्ण की शरण लेने का प्रोसेस ही श्रद्धा का विकास का प्रोसेस है। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी हमारी शरणागति भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी एंगल से आप ये भी देखें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप जिन जिन लोगों पर श्रद्धा रखेंगे इस जगत में कभी ना कभी वो धोखा जरूर दे देंगे, वो ना भी चाहें तो भी धोखा हो ही जाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब धीरे धीरे हम विश्वास होने लग जाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो रियली मुझको जानता है, कौन है वो? कृष्ण। बल्कि मैं भी अपने आप को नहीं जानता, वही मेरे को जानता। ऐसा कौन व्यक्ति जो कभी मेरे को नहीं छोड़ा है? कृष्ण। तो फिर धीरे धीरे हमारी ये जो चेतना है, फिर हम समझेंगे कि एक्चुअली इसको कृष्ण की तरफ और भक्तों के संग में हम इस प्रकार की चेतना में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करके उनकी तरफ मोड़ने का प्रयास करें, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। स्टॉप।